लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः आपराधिक तस्करी के शिकार बनने वाले हमारे आप्रवासी भाइयों और बहनों की पुकार सुनी जाए तथा उनकी पुकार हमारे चिंतन का विषय बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। स्तोत्र ग्रंथ 150 भजनों का संग्रह है। इन भजनों में विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक विषयों को प्रस्तुत किया गया है। कुछ भजन प्राचीन इसराइलियों के इतिहास का वर्णन करते तो कुछ में ईश कीर्तन, सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापन और पापों के लिए क्षमा की याचना के गीत निहित हैं। कुछ ऐसे भी भजन हैं जिनमें प्रभु की कृपा, उनके अनुग्रह और अनुकंपा की याचना की गई है। इन भजनों में मानव की दीनता और दयनीय दशा का स्मरण कर करुणावान ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वे कठिनाइयों को सहन करने का साहस दें और सभी बाधाओं को जीवन से दूर रखें। तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। मैंने शपथ खाई और इस पथ पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूंगा। श्रोताओ, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन के 101 से लेकर 106 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इन पदों में भजनकार बताता है कि प्रभु के नियमों का पालन करने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है। उसके लिए कुमार्ग से दूर रहना आवश्यक है, प्रभु की आज्ञाओं के मार्ग पर चलना जरूरी है, जो प्रभु ने स्वयं मनुष्य जाति पर नबी मूसा के माध्यम से प्रकट की है। भजनकार कहता है, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। जिस प्रकार मधु से अधिक प्रभु की शिक्षा की मिठास होती है, उसी प्रकार भजनकार कहता है हम सबके लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की शिक्षा की मिठास ही हम में विवेक और प्रज्ञा उत्पन्न करेगी तथा हम सत्य के मार्ग पर अचल बने रहेंगे। 106वें पद में कहता है, मैंने शपथ खाई और इस पथ पर दृढ़ रहता हूँ कि मैं तेरे न्याय संगत निर्णयों का पालन करूंगा। यहाँ भजनकार सचेत करता है कि प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करना और उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करना सरल काम नहीं है। इसके लिए हमें दृढ़ संकल्प की जरूरत है, प्रण करने की जरूरत है, अपने मन में यह शपथ लेने की जरूरत है कि मैं प्रभु के न्याय संगत निर्णयों का पालन करूंगा।
तुझे चाहता हूँ बस
आगे स्तोत्र ग्रंथ के 119वें भजन की पद संख्या 107 से लेकर 112 तक में भजनकार प्रभु से नव जीवन की याचना करता है, प्रभु की कृपा और उनकी अनुकंपा के लिए विनती करता है, इसलिए कि वह इस तथ्य के प्रति सचेत है कि विधर्मियों और विरोधियों का सामना करने के लिए उसे प्रभु की आशीष और कृपा की नितांत आवश्यकता है। ये पद इस प्रकार है, प्रभु मेरा बहुत अधिक अपमान किया गया है, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नव जीवन प्रदान कर, प्रभु मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करने की कृपा कर, मुझे अपने नियमों की शिक्षा दे, मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूं, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई है, विधर्मियों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, किंतु मैं तेरे आदेशों से नहीं भटका, तेरी शिक्षा मेरी सदा बनी रहने वाली विरासत है, इसमें मेरा हृदय रमता है, मैं सदा जीवन के अंत तक तेरे नियमों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। श्रोताओं, इन शब्दों से पूर्व 105वें पद में भजनकार कहता है कि प्रभु की शिक्षा उसके कदमों की ज्योति है, प्रभु की ज्योति उसका पथ प्रदर्शन करती है, उसका पथ आलोकित करती है। प्रभु की ज्योति इस संसार के अंधकार में भटकने वाले हम मनुष्यों का पथ प्रदर्शन करती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्राचीन व्यवस्थान के युग में उसने मिस्र की गुलामी से मुक्त हुई इजरायली प्रजा का पथ प्रदर्शन किया था। श्रोताओं, हम सबको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु प्रकाश की आवश्यकता है। हम अपनी सांसारिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, कठिनाइयों और कष्टों का कहीं कोई अंत नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में हम प्रभु से ऐसे जीवन का अनुरोध करते हैं जो कठिनाइयों से रहित हो, जिसमें कोई समस्याएं नहीं हो, जिसमें हमारा कोई विरोधी न हो। ऐसे जीवन का वरदान मांगते हैं जो दुनिया की धन दौलत से खरीदा नहीं जा सकता, जो किसी वैज्ञानिक खोज से पाया नहीं जा सकता, और वह जीवन है सुख शांति का जीवन। 119वें भजन का रचयिता ऐसे ही नव जीवन की प्रभु से याचना करता है। फिर आगे 109वें पद में भजनकार कहता है, मैं निरंतर हथेली पर जान रखता हूँ, लेकिन मैंने तेरी संहिता नहीं भुलाई है। प्रभु ईश्वर के समक्ष भक्त इस बात को स्वीकार करता है कि उसका जीवन जर्जर है, वह कभी भी समाप्त हो सकता है। हथेली पर जान रखने का अर्थ है पग पग पर संकटों का सामना करते हुए जीते रहना। इस दृष्टि से भजनकार कहता है कि हालांकि उसका जीवन कष्टों से भरा है, हालांकि उसके विरोधी उसे कभी भी मार डाल सकते हैं, तथापि उसका विश्वास अडिग है। अपने विश्वास के कारण वह प्रभु के नियमों पर अटल रहता है। वह प्रभु की शिक्षा पर चलने के लिए इस कदर तैयार है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु उसके साथ रहा करते हैं, प्रभु ही उसकी ढाल और उसका दुर्ग हैं। यहाँ इस तथ्य को भजनकार ने प्रकाशित करना चाहा है कि प्रभु पर विश्वास और भरोसा रख कर उनकी संहिता का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य जीवन के हर जोखिम को पार कर सकता है। प्राचीन व्यवस्थान के सैमुएल के पहले ग्रंथ के 19वें अध्याय के 5वें पद में दाऊद का भाई योनातन अपने पिता के समक्ष दाऊद का पक्ष लेते हुए कहता है, उसने अपनी जान हथेली पर रखकर उस फिलिस्ती को मारा और इस प्रकार प्रभु ने सारे इसराइल को महान विजय दिलाई। और फिर इसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें अय्यूब के ग्रंथ के 13वें अध्याय के 14वें पद में मिलती है। लिखा है, मैं हर जोखिम का सामना करने अपने प्राण हथेली पर रखने के लिए तैयार हूं। भजनकार कहता है कि विधर्मियों ने उसके लिए जाल बिछाया किंतु वे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए क्योंकि वह ईश्वर के आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। प्रभु की शिक्षा ही उसके लिए सदैव बनी रहने वाली विरासत है। वह जीवन के अंत तक प्रभु के नियमों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प है।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, मेरा प्रभु है शरण शिला जो शरणागत का डेरा, वही ढाल वह परम सहायक महादुर्ग है मेरा। सभी भांति गौरव गायन का अधिकारी है स्वामी, जो ही करूं पुकार उसे मैं, रक्षा करे सदा ही। लहरा कर जब मृत्यु पहुंचती घेरा मुझ पर डाले, बढ़ती आती घातक लहरें मुझे नष्ट कर डाले, मुझे निगल जाने को देखो खड़ी मौत मुँह बाए, और पकड़ लेने को उसने फंदे बहुत बिछाए। घोर निराशा की घड़ियों में मैंने नाथ पुकारा, ईश्वर बने।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने यूएफआई ग्लोबल सेवा शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से 6 फरवरी को वैटिकन के क्लेमेंटीन सभागार में मुलाकात की। उनका सम्मेलन 5 से 7 फरवरी को रोम में आयोजित किया गया है। संत पापा ने उनसे मुलाकात करते हुए कहा, मैं आपके विश्व शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात कर खुश हूँ। यह सम्मेलन रोम में चल रहा है जो विश्वास एवं संस्कृति का शहर है। वर्षों से यह लोगों और विचारों का मिलन स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला उद्योग के नेताओं के रूप में आप यहां जमा हुए हैं, न केवल पेशेवर आयोजकों के रूप में बल्कि इसलिए कि आप अपने कार्यों से अधिक न्यायपूर्ण एवं मानवीय वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहयोग दे सकें। संत पापा ने कहा कि हमारे जीवन के विभिन्न आयामों एवं सामाजिक सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्रियाकलापों द्वारा हम आपस में नजदीकी से जुड़े हैं। इस संबंध में व्यापार व्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन संरचना की स्थापना को प्रभावित किया है जो आर्थिक और व्यवसायिक गतिविधियों के समग्र प्रभाव का मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पेशे के क्षेत्र को इस तरह दिखाया गया है कि मेलों और प्रदर्शनियों का न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं एवं श्रम बाजारों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि व्यापक दुनिया और स्थानीय संस्कृतियों एवं पारिस्थितिक तंत्र की समृद्ध विविधता और सुंदरता को दिखाने के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। खासकर वैश्विक प्रदर्शनियां मुलाकात की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, जो एकात्मकता के संबंध को मजबूत करता एवं मानव परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समृद्धि को बढ़ावा देता है। संत पापा ने कहा कि इस प्रकार उनके कार्य का एक उत्कृष्ट आयाम है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित की सेवा हेतु समावेश की भावना आम घर की देखभाल तथा व्यक्ति और सभी लोगों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये नैतिक चिंताएं गौण नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक हैं, जो वित्तीय सफलता को मापने के लिए एकमात्र बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करते। संत पापा ने उन्हें आर्थिक और मानवीय सफलता प्राप्त करने के लिए स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सहयोग करने की बात पर बल दिया। उन्होंने कहा, प्रदर्शनियां जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की मदद करती हैं, अपने श्रम शक्ति को संलग्न करती, अपनी संस्कृति को मूल्य और महत्व देती और अपने मानवीय एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी का सम्मान करती हैं, वे अधिक सफल और यादगार होंगी। वे स्थानीय स्तर पर और दुनिया भर में प्रभाव डालेंगी और लोगों को आकर्षित करेंगी। संत पापा ने कहा कि प्रदर्शनी एवं मेला के आयोजन में कई कठिनाइयों के बावजूद उनके द्वारा एक सच्चे मानव संबंध का जाल बिछाया जा सकता है, जिसका प्रभाव उस अवसर तक ही सीमित नहीं रहता। संत पापा ने प्रतिभागियों को उनके प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी तथा उन पर एवं उनके परिवार वालों पर ईश्वर के आशीष की कामना की। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व आर्थिक प्रणाली के नेताओं से अपील की है कि वे गरीबों पर ध्यान देते हुए, जो विश्व की उदासीनता के कारण छूट जाते हैं, बढ़ती आय असमानता को कम करें। फ्रांस, अर्जेंटीना, मेक्सिको, पाराग्वे और एल साल्वाडोर के वित्त मंत्री, एक नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक ने बुधवार को वैटिकन कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला की विषय वस्तु थी नए तरीके की एकात्मकता। इसका आयोजन सामाजिक विज्ञान के लिए गठित परमधम पीठ अकादमी के तत्वाधान में किया गया था। इसने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में प्रमुख नेताओं के समावेश, एकीकरण एवं नवाचार के माध्यम से बढ़ती असमानता पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। संत पापा ने कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रचलित आर्थिक मॉडल के पीछे कई खतरों को उजागर किया तथा धनी एवं गरीब के बीच बढ़ती खाई को भरने के लिए कई उपाय बताए। संत पापा ने कहा, विश्व धनी है, फिर भी गरीब लोगों की संख्या हमारे आसपास बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग अत्यंत गरीबी का सामना कर रहे हैं। उनके पास न खाने के लिए भोजन है, न घर, न चिकित्सा सुविधा, न स्कूल, न बिजली और न ही पेयजल। अनुमानतः करीब 5 मिलियन बच्चे इस साल गरीबी से जुड़ी समस्याओं के कारण मौत के शिकार होंगे। संत पापा ने कहा कि आय में असमानता में वृद्धि ने लाखों लोगों को जबरन मजदूरी, वेश्यावृत्ति और मानव अंग तस्करी का शिकार बनाया है। ये वास्तविकताएं हमें कदम उठाने हेतु प्रेरित करें, न कि निराशा में डालें। ये हल किए जाने वाली समस्याएं हैं और इसके लिए न ही वैश्विक असमानता को दोष दिया जा सकता है। संत पापा ने कहा, गरीबी से ऊपर उठा जा सकता है यदि एक आर्थिक व्यवस्था को उस स्थान पर रखा जाए जो समाज के पिछड़े लोगों को खिलाता, ख्याल रखता और पहनाता है। संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार 6 फरवरी को क्रोएशिया के राष्ट्रपति अंद्रेस प्लेनकोविक से वैटिकन में मुलाकात की, जिन्होंने क्रमशः वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन और वैटिकन विदेश सचिव मॉन्सिनियर पॉल रिचर्ड गलाघर से भी मुलाकातें की। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है कि वैटिकन राज्य सचिव के साथ मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही, जिसमें दोनों पक्षों ने अपने संबंधों की सराहना की तथा आपसी लाभ के क्षेत्रों में विकास करने हेतु सहयोग जारी रखने की इच्छा जाहिर की। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि बाकी बातचीत में यूरोपीय संघ की परिषद के क्रोएशिया क्षेत्र की मुख्य प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, खासकर उन चुनौतियों के संबंध में जो यूरोप के भविष्य की चिंता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।